and maintain some distance.
Praise God for this another time the Lord has given us to be at His feet.
उसके पाव में बैठने के लिए फिर से जो समय हमें प्रभु ने दिया उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं.
Right from the morning we have been listening to various truths in connection with the leadership in the assemblies.
कलीसिया के अंदर के नेतृत्व के संबंध में अनेक बातें शुरू से लेकर सुबह से लेकर हमने सुना.
It's my prayer that the Lord would speak to us and there would be an impact in the local assemblies to which we belong to.
मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमसे बातचीत करे और जिन कलीसियाओं से हम आए हैं उन कलीसियाओं के अंदर इस वचन की सेवकाई के द्वारा प्रभाव आए.
As I reminded yesterday also the topics that are being chosen are very important and if it's being heard properly and applied properly definitely it's going to make impact in the days to come.
जैसे कल मैंने बताया जो विषय चुना गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है. यदि हम ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से लागू करेंगे तो आने वाले दिनों में बड़े आशीष का कारण हो जाएगा.
May the Lord help us and give us His grace.
प्रभु हमें आशीष दे और अपने अनुग्रह हमें दे.
Now in this session also we are going to be in the same topic.
और इस समय में भी हम उसी बात को जारी रखेंगे.
That is the leadership or the administration of the local assembly.
कलीसिया के अंदर के नेतृत्व या कलीसिया के अंदर के प्रशासन.
In fact both these classes today one class and tomorrow one class of mine we will be dwelling upon that same topic.
आज और कल दोनों दिन मेरा जो क्लास है इन दोनों क्लासेस में हम इसी विषय को सीखेंगे.
My classes what I would be taking is first of all the provision of the leadership.
इन क्लासेस में सबसे पहले मैं उस विषय की ओर ध्यान लेना चाहता हूं जो कलीसिया के अंदर के नेतृत्व के लिए परमेश्वर का प्रबंध क्या है.
एंड देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द लीडरशिप.
और नेतृत्व को किस प्रकार प्रभु ने नियुक्त किया है.
एंड देन देयर ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशंस.
और नेतृत्व की जिम्मेदारियां और नेतृत्व की योग्यताएं.
बिफोर वी कम टू दैट
और उसमें आने से पहले
यू विल जस्ट recap the things that we studied in our last class together.
Pichle class mein humne jo seekha hai usko ek baar thoda sa yaad karenge.
The last class we have been looking at the gatherings of the assembly.
Humne pichle class mein dekha ki kalisya ke vishwasiyon ke ikatthe hone ke sambandh
mein. We saw the two forms of existence of a local assembly.
Sthani kalisya ke do prakar ke astitv ke bare mein humne dekha.
Kya de
kya kya hai sthani kalisya ke do prakar ke astitv.
Which are they? Scattered and gathered.
Titar pitar aur ek saath.
Many a time when we think about the local assembly, we only think about the gathered company of people.
Sthani kalisya ke vishay mein jab bhi hum vichar karte hain, hum sirf us samay ko yaad karte hain jab sare vishwasi ek saath baithe honge.
But the existence of the assembly is not only when we are come together, but the other times also it's there.
परंतु कलीसिया का कलीसिया जो है सिर्फ हम जब इकट्ठे होते हैं तब नहीं परंतु हर समय में कलीसिया के अस्तित्व है.
As I mentioned yesterday, well, the gathering in a week is only for a 5 or 6 months.
जैसे कल मैंने याद दिलाया एक हफ्ते में शायद कलीसिया इकट्ठे होने के पूरे समय को निचोड़े तो शायद 5 या 6 घंटे पाए जाते हैं.
Rest of the other hours, all the rest of the time, well, we are scattered in various places.
और हफ्ते के बाकी सारे समय हम तितर बितर हैं समाज में बीच में रहते हैं.
And the purpose of our choosing, purpose of our life is, it happens only when we are scattered in various places.
और हमारे अस्तित्व के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति तभी होता है जब हम लोगों के बीच में समाज के बीच में तितर बितर रहते हैं.
That were scattered abroad, they preached the word.
क्योंकि लिखा है जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार प्रचार किए.
So the purpose concerning us is fulfilled in that scattered form.
हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर का उद्देश्य तब पूरा हो जाता है जब हम लोगों के बीच में रहते हैं.
But the effect in that form depends upon the character of the gathering together.
परंतु तितर बितर के दशा में हमारे जीवन का जो प्रभाव है सेवकाई का प्रभाव है इसके ऊपर निर्भर होता है कि हमारे इकट्ठे होने का स्वभाव के गुण कितना है.
It is in the gathering we get the guidance, we get the grace.
क्योंकि इकट्ठा होते समय हमें अगुवाई मिलता है हमें अनुग्रह प्राप्त होता है.
So this gatherings of the assembly is most important.
और इसलिए कलीसिया के इकट्ठा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है.
We have seen the authority which gathers.
हमने देखा कि किस अधिकार से हम इकट्ठे होते हैं.
It's the Lord himself.
क्योंकि वो यीशु मसीह खुद है.
And we saw the members who gather together.
और हमने भी देखा कि कौन इकट्ठे होते हैं.
My saints.
मेरे भक्त.
We had seen the purposes of it also.
हमने ये भी देखा कि इकट्ठे होने के पीछे उद्देश्य क्या है.
Conversion. People should turn to the Lord.
लोगों का परिवर्तन होना, लोग प्रभु में आना है.
Who have turned, they have to be edified.
और जिनका उद्धार हुआ उनके आत्मिक उन्नति होना है.
And by all things God should be glorified at the gathering.
और इन सब चीजों से परमेश्वर की महिमा होना है.
Oh yes, if that should happen, well we should not forsake the assembling together of the saints.
यदि ऐसी बातें होती है तो होना है. मंडली के गलिसिया के इकट्ठे होने को हमें कभी भी तुच्छ नहीं जानना है.
इट इज नॉट जस्ट बीइंग देयर.
सिर्फ वहां उपस्थित होना काफी नहीं.
बट आवर एक्टिव प्रेजेंस देयर, पार्टिसिपेशन इन द लाइफ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट.
परंतु वहां के कार्यक्रम में, गतिविधियों में एक सक्रिय भूमिका हमारा होना जरूरी है.
आई शुड से दैट आवर अटायर एंड आवर एटीट्यूड ऑट टू बी राइट व्हेन वी कम टू द प्रेजेंस ऑफ
गॉड. मैं ऐसा कहता हूं, वहां के अंदर हमारे बर्ताव, हमारे रहन सहन और हमारे स्वभाव, सब कुछ ये परमेश्वर की महिमा के लिए हो.
यू रिमेम्बर द utterance of the statement of the Levites in Nehemiah's time.
नहमया के जमाने में लेवियों का उस कथन को आप याद करते हैं.
Nehemiah set all things in order.
जब नहमया ने सारी बातों को क्रम में लाया.
There the Levites said, we will never forsake the house of God.
तो लेवियों ने कहा कि परमेश्वर के भवन को हम कभी तुच्छ नहीं जानेंगे.
Knowing the importance of the gatherings.
और ये है कलीसिया के इकट्ठे होने का महत्व.
Well, we should have that same decision as that Levites had.
और जैसे लेवियों का वो निर्णय था, हमारा निर्णय वैसे ही होना जरूरी
है. But the sad fact is this.
दुख की बात ये है.
On Sunday morning, the house is full.
रविवार का सुबह भवन भरा हुआ होता है.
For the Bible study, 40% would be there.
लेकिन बाइबल के अध्ययन के समय सिर्फ 40% लोग आएंगे.
For the prayer meetings, it's just 10%.
प्रार्थना के सभा में सिर्फ 10%.
Well, in the camps, in the conferences, well, we see everything full.
सारे सम्मेलनों में, कैंप्स में सब भरे हुए हैं कुर्सियां.
Yeah, here almost all the chairs are full.
Yeah, सारे लोगों की सारी कुर्सियां भरी हैं.
But in the assembly prayer meetings.
परंतु कलीसिया के प्रार्थना सभाओं में.
It's like seeing the, you know, a color TV and a black TV, black and white TV.
जैसे color TV और black and white TV देखने में जो फर्क है, उतना फर्क दिखता.
Conferences like this are like, you know, viewing the color TV.
हाँ, इस प्रकार के बड़े-बड़े सम्मेलन color TV को देखने के जैसा.
Oh, you're stuck to it.
हाँ, वहाँ छिपा हुआ है.
You don't like the black and white.
आप black and white आपको पसंद नहीं है.
That's the gatherings of the local assembly.
और ये है स्थानीय मंडली के इकट्ठे होना.
May the Lord help us that we may give importance to the local assembly gatherings so that there may be revival in our local gatherings.
प्रभु हमारी मदद करे कि स्थानीय कलीसिया के इकट्ठे होने को हम महत्व दें, ताकि ऐसे इकट्ठे होने के बीच में जागृति को हम महसूस करें.
Many a time what happens is we give any reasons for being absent from the gatherings.
अक्सर ऐसा होता है कि कलीसिया से दूर रहने के लिए हम कुछ भी बहाना देते हैं.
We should remember that the reason that we give should be something that's acceptable to the Lord himself.
हमें यह समझना जरूरी है कि कलीसिया से दूर रहने के लिए जो बहाना हम देते हैं, वो बहाना प्रभु के लिए ग्रहण योग्य हो.
A lot of things in connection with that, I'm not going into the details.
उस बात के संबंध में और बातें कहना है, लेकिन हम उसकी ओर नहीं जाएंगे.
Now, for this session, let's start with 1 Peter chapter 5 verses 1 and 2.
इस सेशन के शुरुआत के लिए पहला पत्रस
chapter 5 verses 1 and 2.
पांचवा अध्याय के पहला और दूसरे पदों को हम पढ़ेंगे. पहला पत्रस पांचवा अध्याय के पहला और दूसरा पद. तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर.
Here we see the instruction that Peter gives to the leadership in the local assemblies.
स्थानीय मंडली के अगुओं को पत्रस की तरफ से जो शिक्षाएं देता है, वो हम यहां पर पाते हैं.
When you come to the Old Testament,
पुराने नियम में हम जब आते हैं,
we see that whenever there were good kings in Israel and Judah, the people also were near to God.
हम ये पाते हैं कि यहूदा और इसराइल में जब कभी अच्छे राजा हुआ करते थे, तो प्रजा भी अच्छे होते थे.
When there were wicked kings, well, the people went after Baal.
और जब राजा दुष्ट और बुरे होते थे, तो जैसे राजा था वैसे प्रजा भी बनते थे.
So it is the leadership that gives character to the whole body.
उसका मतलब यह है कि एक झुंड के नेतृत्व उस झुंड के स्वभाव को पैदा करता है.
If the head is not functioning properly, don't expect anything from the body.
यदि सिर का कार्य करना सही ढंग से नहीं है तो शरीर का कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होगा.
That's why when you come to the Old Testament, when you come to the New Testament, we see lot of instructions in connection with the leadership of the gatherings.
और इसलिए हम पुराना नियम में और नया नियम में दोनों में अगुवाई के संबंध में नेतृत्व के संबंध में बहुत सारे आदेशों को हम पाते हैं.
Lord is very much careful about it.
प्रभु इस बात के संबंध में बहुत ही ध्यान रखता है.
When you come to 1 Samuel chapter 17,
पहला शमूएल के पुस्तक 17वां अध्याय में,
there we see David going to see his brethren who were in the war front.
दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए जाते हैं जो लड़ाई के मैदान में हैं.
He left his sheep with the keepers.
उसने अपने भेड़ों को किसी एक रखवाले के अधीन में देकर गया.
He was not just leaving it anywhere and thinking that he will come back and see where they are.
ऐसा नहीं कि दाऊद अपने भेड़ों को यूं ही छोड़कर गया, ये सोचकर गया कि वापस आकर मैं देखूंगा.
He left it with the keepers.
उसने उस भेड़ों को रखवाले के हाथ में दिया.
Later when he reached the war front,
और उसके बाद जब लड़ाई के मैदान में पहुंचते हैं,
you see the words of Eliab, his elder brother.
उसके बड़े भाई एलियाब के शब्दों को हम पाते हैं.
Where is that few sheep which is in the wilderness?
वो थोड़ी सी भेड़ जो बकरियां तुम्हारे हाथ में दिया था वो कहां है?
Where have you left them?
तुमने उसको कहां छोड़ दिया?
You are a man with haughty spirit. A pride kind of
man. एक बड़े घमंड वाला इंसान है.
What he thought was David did not have any care for his sheep at all.
तो उसके भाई ने ये सोचा कि इन भेड़ बकरियों के संबंध में दाऊद का बिल्कुल ख्याल नहीं है.
But that was not true about David.
परंतु दाऊद के संबंध में वो सही नहीं था.
David much cared for it.
दाऊद उसका ख्याल करता था.
Left it with the keepers and went.
और एक रखवाले के हाथ में उसको सौंप करके फिर आगे चला गया.
In the Lord Jesus Christ also we see the same care in connection with the churches.
प्रभु यीशु मसीह के संबंध में भी इसी प्रकार का ख्याल जो कलीसिया के साथ हम देखते हैं.
When we come to Philippians chapter 1 and verse 1,
फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय का पहला पद में हम जब आते हैं,
there we see this truth very clearly.
और यहां हमें यह सच्चाई बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है.
In verse 1 we see that the saints are with the bishops and the deacons.
यहां पर हम संतों को पवित्र लोगों को अध्यक्षों और सेवकों के साथ देखते हैं.
Yeah, saints with the bishops and deacons.
सब पवित्र लोगों के नाम जो अध्यक्षों और सेवकों समेत.
When we come to 1 Peter chapter 5,
पहला पत्रस पांचवा अध्याय में हम जब आते हैं,
the verse that we read in the beginning,
और शुरुआत में हमने जो पदों को पढ़ा,
there we see the elders among the saints.
और वहां पर हम प्राचीनों को विश्वासियों के बीच में हम पाते हैं.
In Philippians 1 and 1,
फिलिपियो एक एक में,
saints are with the bishop and the deacons.
संत लोग अध्यक्ष और सेवकों के बीच में हैं, साथ में हैं.
1 Peter 5 and 1,
पहला पत्रस 5 के 1 में,
this leadership is among the saints.
और ये अगुवाई जो है लोगों के, मसीह के लोगों के बीच में है.
If we put together,
इन दोनों बातों को हम जोड़ेंगे,
we see that the people or the flock and its leadership are intertwined. We see them as one unit.
हम इन दोनों समुदाय को, विश्वासियों को और अगुओं को, नेतृत्व को एक ही प्रकार देखते हैं, एक ही साथ देखते हैं.
Inseparable.
ये अलग नहीं हो सकते.
For they care, we see the Lord gave those leadership into the flock.
और इसलिए प्रभु विश्वासियों की ख्याल करने के लिए नेतृत्व को कलीसिया में दिया है.
Now, as I mentioned,
जैसे मैंने बताया,
in connection with this leadership, well, I'll be taking four points or four subtopics.
नेतृत्व के संबंध में चार बिंदुओं को मैं लेना चाहता हूं.
The first one is the provision of the leadership.
और उसका पहला बिंदु यह है कि नेतृत्व के लिए परमेश्वर का प्रबंध.
Who are the people that are being given unto the flock or unto the church of God or unto the churches to lead them?
परमेश्वर के गलिसिया के लिए, गलिसियाओं के लिए, झुंडों के लिए वो कौन है जिनको नेतृत्व के रूप में प्रभु ने दिया है?
Before we come to that,
उसमें आने से पहले,
let me restate one statement that we heard in the morning.
सुबह हमने जो वचन को सुना है एक बार फिर उसको दोहराना चाहता हूं.
In the church, it is the Lord Himself who rules.
गलिसिया में प्रभु स्वयं शासन करता है.
It's not democracy.
ये प्रजातंत्र नहीं है.
It's not anarchy, no king.
ऐसा भी नहीं कि कोई राजा नहीं इसलिए सब राजा हैं.
It's theocracy.
ये ईश्वरीय शासन है.
God rules there.
परमेश्वर का शासन है.
He rules with three elements.
परमेश्वर तीन प्रकार शासन चलाते हैं.
With his own presence.
अपनी उपस्थिति से.
That two or three are gathered in my name, there am I in the midst.
जहां दो या तीन लोग मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं हूं.
So his presence is there.
वहां पर उनकी उपस्थिति है.
Secondly.
दूसरी बात.
His precept, that is the word of God.
उनके वचन जो उसने निर्धारित किया है.
And thirdly.
तीसरी बात.
His people or the people whom he has set upon or kept upon the people.
उनके लोग जिनको अगुवाई के लिए उसने नियुक्त किया है.
Now our concern is about the third one, that is the people who are kept over or gifted to the churches.
या उसमें हमारा विषय वो तीसरा बिंदु है जिसमें हम पाते हैं वे लोग जिनको अगुवाई के लिए प्रभु ने कलीसिया के अंदर नियुक्त किया.
When we put together various portions,
और सारे भागों को हम जब एक साथ जोड़ते हैं,
we see that there are at least seven offices or seven gifted men that are given to the churches.
हम देखते हैं कि कलीसिया को दिया हुआ दान में सात प्रकार के पद हैं या सात प्रकार के लोग हैं जो विशेष वरदान पाए हुए हैं.
One passage is Ephesians 4:11.
एक भाग इफिसियों की पत्री 4:11 है.
We considered that in the last class.
पिछले क्लास में हमने उसको ध्यान दिया.
What are the gifts there or gifted men there?
कौन कौन है वहां के वे अगुवे लोग जिनको प्रभु ने विशेष अधिकार दिया है.
Apostles.
प्रेरित लोग.
Prophets.
भविष्यद्वक्ता.
Evangelists.
सुसमाचार प्रचारक.
Pastors.
प्राचीन.
Teachers.
शिक्षक.
How many?
कितने?
Five. There are those who take it as five and there are those who take it as four also.
कुछ लोग उसको पांच के रूप में लेते हैं, कुछ लोग चार के रूप में लेते हैं.
Last class we heard it as five.
पिछले क्लास में हमने उसको पांच के रूप में देखा.
But I feel more comfortable in taking it as four.
और मुझे उसको चार के रूप में लेना और अच्छा लगता है.
There is no contradiction or any problems like that.
इसमें कोई विरोधाभास नहीं, आपस में कोई मतभेद नहीं.
Only thing is when I stand here it is four.
जब मैं खड़ा हूं तो ये चार है.
And when brother stands it's five.
जब भाई वर्गीस कुरियर खड़े हैं तो पांच होगा.
So when I ask say four, okay?
जब मैं पूछता हूं तो चार बोल रहा.
Among the Bible teachers, well, both these opinions are there. There's no problem with
that. Bible के शिक्षकों के बीच में ये इस प्रकार का विचार में फर्क है, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं.
I don't have to explain this for.
इसके विषय में ज्यादा विवरण देने की जरूरत नहीं.
First of all, you have the apostles.
सर्वप्रथम हमारे सामने प्रेरित हैं.
Who are the apostles indicated here?
यहाँ के प्रेरित कौन है?
The 12.
12 प्रेरित.
And then you have the prophets.
उसके बाद भविष्यद्वक्ता हैं.
They were the ones who received God's word directly from God and brought it to the people.
ये वे लोग हैं जो प्रभु का वचन को प्रभु के हाथ से स्वीकार किया और लोगों के बीच में पेश किया.
We should remember that those were the time when the scripture was not complete.
हमें याद करना है कि ये वैसा समय था जब परमेश्वर का वचन लिखकर पूरा नहीं हुआ था.
His ministry was very important then.
और इसलिए ये सेवकाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहा.
And thirdly, we have the evangelists.
और तीसरा झुंड है जो सुसमाचार के प्रचारक हैं.
Who are the evangelists?
सुसमाचार प्रचारक कौन है?
Are all evangelists?
क्या सब सुसमाचार प्रचारक हैं?
All are witnesses, but all are not evangelists.
सारे विश्वासी गवाह हैं, परंतु सारे विश्वासी सुसमाचार प्रचारक नहीं हैं.
Because Paul himself says some evangelists.
पौलुस खुद कहता है कुछ को सुसमाचार प्रचारक नियुक्त किया.
All are supposed to share the gospel.
सारे विश्वासियों की जिम्मेदारी है सुसमाचार बताना.
All the believers have got a part in the evangelization.
सारे विश्वासियों को सुसमाचार की सेवा में भाग लेना है.
But the evangelists are those who are specially gifted and called for that purpose.
परंतु सुसमाचार प्रचारक वे हैं जिनको प्रभु ने विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया और विशेष वरदान दिया है.
इफ यू लुक एट द लाइफ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ दोस पीपल वेल यू विल कम टू नो दैट.
और उनके जीवन और उनके सेवकाई को यदि आप परखोगे तो आपको समझ में आएगा.
दे विल हैव अ ग्रेट बर्डन फॉर द पेरिशिंग सोल्स.
और नाश होने वाले आत्माओं के प्रति उनका एक बड़ा बोझ होगा.
ऑल द मिनिस्ट्री विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट.
और उनके सारी सेवकाई उस ओर होगा.
इवन इफ व्हेन यू लिसन टू द प्रेयर्स वेल द बर्डन विल बी वेरी क्लियर देयर.
उनकी प्रार्थनाओं के यदि आप ध्यान दोगे तो ये बोझ वहां दिखाई देगा.
एंड नॉट ओनली दैट इन द मिनिस्ट्री ऑल्सो गॉस्पेल कम्स एनीहाउ.
और इतना भी नहीं उनके सारी सेवकाइयों में सुसमाचार की बातें आता है.
एंड व्हेन दे रीच आउट विद द गॉस्पेल यू विल सी द फ्रूट्स ऑल्सो कमिंग.
और सुसमाचार लेकर जब वो लोगों के बीच में जाता है तो प्रभाव देखने में आता है. लोग उद्धार पाते हैं.
बाय दोस फ्रूट्स वी विल कम टू नो दैट this special gift is being given to them.
उन फलों के परिणाम हम समझते हैं कि यह वरदान विशेष वरदान इनको सौंपा गया है.
Then number four.
और चौथी बात.
Who are they?
कौन है?
Pastors and teachers.
प्राचीन और शिक्षक.
You see, before that word teachers, that word some doesn't appear.
क्योंकि जो शिक्षक है, उपदेशक है, उसके पहले कितनों को जो शब्द है वो नहीं आया है.
बिफोर ऑल दी अदर्स वी सी दैट वर्ड सम कमिंग.
बाकी सारे झुंड के पहले कितनों को जो शब्द है वो आया है.
दैट्स व्हाई वी टेक दैट पास्टर्स एंड टीचर्स एज वन ऑफिस.
और इसलिए रखवाले और उपदेशक जो लोग हैं उन दोनों को एक ही पद के लोग के रूप में हम पाते हैं.
व्हाट डज अ पास्टर डू?
रखवाले क्या करते हैं?
What's the meaning of the word pastor?
Pastor या रखवाले का मतलब क्या होता है?
Yeah, you have in India रखवाला itself, isn't it? Yeah. It's a shepherd.
Yeah, वो चरवाहे होते हैं.
Feeds the sheep.
आज भेड़ों को खिलाते हैं.
What does a teacher do?
और शिक्षक उपदेश देने वाले क्या करते हैं?
The same thing, isn't it?
वही काम करते हैं.
So it's one of the same.
ये दोनों एक ही हैं.
So it's better to take as some pastor teachers, one office.
इसलिए अच्छा होगा कि रखवाले उपदेशक दोनों एक ही हैं.
See, one thing we have to remember.
एक बात हमें याद करना है.
We heard it in the last class also.
पिछले क्लास में भी हमने सुना.
All those gifts that you see here are gifts given unto the universal church.
ये सारे वरदान जो यहां पर प्रभु ने दिया है वो सार्वलौकिक कलीसिया को दिया हुआ वरदान है.
In Ephesians, the subject is not the local church, but it is what? The universal.
एफिसियों की पत्री का विषय है स्थानीय मंडली नहीं परंतु सार्वलौकिक मंडली है.
सो दीज गिफ्ट्स आर द स्पेशल गिफ्ट्स दैट गॉड हैज गिवन और द गिफ्टेड मेन हुम द लॉर्ड हैज गिवन द रिसन लॉर्ड हैज गिवन अंडर द यूनिवर्सल चर्च.
इसलिए यहां लिखा हुआ वरदान ये वो वरदान है जो व्यक्तियों के रूप में प्रभु ने मंडलियों को दिया है जिनमें प्रभु ने विशेष वरदान भर दिया है.
फॉर एग्जाम्पल द एपोस्टल्स दे वर नॉट गिवन जस्ट फॉर द जेरूसलम चर्च.
जैसा कि प्रेरित लोग सिर्फ यरूशलेम के मंडलियों को दिया हुआ वरदान नहीं है.
फील्ड वॉज वाइड.
उनका जो क्षेत्र था भारी क्षेत्र था.
दोज प्रॉफिट्स देयर फील्ड वॉज वाइड.
जो भविष्यवक्ता है उनका क्षेत्र बहुत ही बड़ा था.
इन द सेम वे द इवेंजेलिस्ट ऑल्सो देयर फील्ड इज वाइड.
और वैसे की सुसमाचार प्रचारक का जो कार्य करने का क्षेत्र है बहुत ही विशाल है.
एंड दिस पास्टर टीचर्स ऑल्सो आर दोज गिफ्ट्स वेल दैट्स गिवन टू द यूनिवर्सल चर्च फॉर टीचिंग दैट यूनिवर्सल चर्च और दैट लार्ज बॉडी ऑफ क्राइस्ट.
और ये उपदेशक या रखवाले उपदेशक है ये भी वो वरदान है जो प्रभु ने सार्वलौकिक मंडली को दिया है ताकि मंडली के लोगों को शिक्षा दे.
ए गुड एग्जाम्पल इज अपोलोस फॉर दैट.
अपोलोस एक अच्छा उदाहरण है.
ही वाज अ बाइबल टीचर.
वो बाइबल को सिखाने वाला था.
एंड ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग गॉड्स वर्ड.
एक जगह से दूसरी जगह जाकर प्रभु का वचन को सिखाता था.
दैट्स द एग्जाम्पल फॉर अ पास्टर टीचर.
और ये एक रखवाले उपदेशक का अच्छा उदाहरण है.
लेट मी रिमाइंड यू अगेन ऑल दिस फोर गिफ्ट्स pertains to the universal church.
एक बार मैं फिर से दोबारा याद दिलाऊं ये सारे चार वरदान सार्वलौकिक मंडली के लिए दिया हुआ वरदान है.
For the next gift,
अगला वरदान के लिए
we have to come to Philippians 1:1.
फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय पहला वचन में आना है.
Two offices we saw there.
वहां पर दो प्रकार के पद को हम पाते हैं.
बता दे
क्या क्या है.
या bishops and deacons.
अध्यक्षों और सेवकों या deacons.
और overseers and ministers.
या अध्यक्षों या पासबान और सेवा करने वाले सेवक.
When you come to the scripture,
जब वचन में आते हैं,
we see that these three titles refers to the same person.
तीन शीर्षक जो है एक ही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है.
Overseer,
पासबान या रखवाला,
अध्यक्ष, overseer,
अध्यक्ष,
and then the shepherd or the pastors.
उसके बाद चरवाहे या रखवाला,
elders also,
प्राचीन.
Elders speaks about their experience.
प्राचीन शब्द से उनके अनुभव को दर्शाता है.
Shepherds speaks about their function.
चरवाहे शब्द से उनके कार्य को दिखाता है.
Overseers speaks about their position.
अध्यक्ष जो है वो शब्द उनके पद को बताता है.
In connection with the local assembly, the eldership mentioned everywhere is in plurality.
स्थानीय कलीसिया के संबंध में जहां कहीं नेतृत्व को या प्राचीनों के विषय में लिखा है बहुवचन में लिखा है.
And that eldership responsibility is local, it's for the local assembly.
प्राचीनों का जो जिम्मेदारी है वो स्थानीय कलीसिया के अंदर सीमित है.
And then the sixth one is the deacons.
और छठवां पद है सेवकों, deacons.
So we put together various portions.
काफी और भागों को हम जो मिलाते हैं.
Understand that they are ministers mainly involved in the things material.
इन सेवकों का जिम्मेदारी कलीसिया के भौतिक बातों के ऊपर आधारित है.
You have in Jerusalem Assembly the seven appointed in Acts 6 to serve at the table.
प्रेरितों के पुस्तक छठवां अध्याय में यरूशलेम के मंडली में सात लोगों को नियुक्त किया जो मेज के सेवकाई को करें.
Seventhly,
सातवीं बात,
when you come to Romans 16:1, we see that a deaconess of the church at Kenkrea.
रोमियों की पत्री 16वां अध्याय के पहला पद में जब हम आते हैं वहां पर एक एक सेविका को हम देखते हैं.
Doesn't mean that they teach or do any public ministry as such.
उसका मतलब ये नहीं कि वो शिक्षा देती हैं या सामाजिक तौर से कोई कार्य करती हैं.
But they do the things of God in connection with the assembly according to the work that's being allotted to them.
परंतु उनको दिया हुआ सेवकाई के आधार पर वहां में सीमित रह करके प्रभु के लिए मंडली के अंदर सेवा करती
हैं. Have to go into the details of that.
उसके ज्यादा विवरण में जाने की जरूरत
है. Tell me which are the seven?
कौन कौन सा है सात पद?
नंबर वन,
पहला पद,
अपोसल्स,
प्रेरित.
नंबर टू,
दूसरा पद,
प्रॉफिट्स,
भविष्यद्वक्ता.
नंबर थ्री,
तीसरा पद,
इवेंजेलिस्ट,
सुसमाचार प्रचारक.
नंबर फोर,
चौथा पद,
पास्टर टीचर्स,
रखवाले शिक्षक.
नंबर फाइव,
पांचवा पद,
yeah, bishops or elders.
अध्यक्ष या प्राचीन.
Six,
छठवां पद,
deacons or ministers,
सेवक.
Lastly,
सातवां पद,
yeah, the deaconesses,
सेविका.
The first two, as we earlier also heard, are temporary or foundational.
हमने जैसे शुरू में सुना कि पहला दो पद जो है अस्थाई रूप में दिया गया था.
And the last two are subordinate.
और आखिरी दो पद हैं आधीन में रहकर करने वाले पद हैं.
Subordinate to the eldership in the assembly.
रहकर जो सेवा करते हैं वो है आखिरी दो पद.
So the first two and the last two you can delete